त्रिलोक सार लेक्चर नंबर एक। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्। बलगोविंद सिहामणि किरण कला वरुण चरण किरणम्, विमलयरणेमि छंदम्, तिहुवन छंदम् नमंसामि। ये ग्रंथराज श्री त्रिलोकसार है और उसके जो विशुद्धमती माता जी ने जो टीका लिखी है उसके आधार से आज से हमारा यह स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। अभी जो हमने गाथा पढ़ी है वो मूल त्रिलोकसार ग्रंथ की आचार्य नेमिचंद्र ने लिखी हुई गाथा है। इस पर श्री माधव चंद्राचार्य विरचित संस्कृत टीका है जिसका मंगलाचरण एक नंबर में हम देखेंगे। उसी के एक पेज पहले संस्कृत टीका है, इसको मैं अभी पढ़ूंगी। एक ही नंबर का हम पहला ही श्लोक पढ़ेंगे, फिर बाद में टोडरमल जी की भी जो मंगलाचरण है उसको भी हम देखेंगे। त्रिभुवन चंद्र जिनेन्द्रम भक्त्यानत्य त्रिलोक सारस्य वृत्तिरियं किञ्चिज्ञ प्रबोधनाय प्रकाशते विधिना। इसके बाद थोड़ी पंडित टोडरमल जी ने ये भूगोल पढ़ने से क्या फायदा है आदि जो कुछ बातें बताई, आपके पास वो नहीं है, मैं पढ़ूंगी आप सुनना केवल, ये ढूंढारी भाषा में है। उसके पहले हम एक उन्होंने जो छह छंद लिखे हैं हिंदी भाषा टीका में उसको मैं पढ़ूंगी। त्रिभुवन सार पार गुण न्यायक नायक सन, त्रिभुवन हितकारी नमो श्री अरहंत महन। तीन भवन के मुकुटमणि गुण अनंतमय शूत, नमो सिद्ध परमात्मा वीतराग विरूत। तीन भुवन थिति जानिके आप आपमय हो, परते भये विरक्त अति नमो महामुनि सोय। तीन भुवन मंदिर विषय अर्थ प्रकाशन हार, जैन वचन दीपक नमो ज्ञान करण गुणधार। तीन भुवन महि जेलसय चैत्य चैत्य ग्रह सार, ते सब वंदो भाव जुत शुभ कारण सुख कार। ऐसे मंगल रूप सब तिनके बंदे पार, अब किछु रचना कहत हो नाना विधि सुख नाय। मूल ग्रंथ में से पढ़ने के पहले जो हमारे पास हिंदी अनुवाद है, हिंदी टीका है, यहाँ जो पंडित टोडरमल जी ने भाषा टीका लिखी थी उसको मैं यहाँ कुछ उसमें से अंश पढ़ के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये क्यों जरूरी है पढ़ना, इससे हमें क्या लाभ होगा। हमें तो आत्मा को जानना है और ये भूगोल जानने से हमें क्या फायदा, ऐसा प्रश्न उठता है तो उसके बाद यह हम देख रहे हैं। ये जो एक नंबर है प्रस्तावना का, विषय सूची के पहले भूमिका लिखा है उसको, वही आपके हाथ में है। हाँ, ये भाषा टीकाकार पंडित प्रवर टोडरमल जी लिखित भूमिका है, ये शास्त्र की भूमिका। इस शास्त्र की संस्कृत टीका पूर्वय भई है। कोई अक्षर समझ में नहीं आए तो पूछना, ढूंढारी भाषा है, भई है ना, हुई है। तथापि तहा यानी वहां संस्कृत गणितादि का ज्ञान बिना प्रवेश हो ही सकता नहीं। संस्कृत टीका अवेलेबल है परंतु उसमें संस्कृत का भी ज्ञान आवश्यक है और गणित का भी। तातई स्तोक ज्ञान वालों के, अल्प बुद्धि वालों के लिए त्रिलोक के स्वरूप का ज्ञान होने के अर्थ ही तीस ही अर्थ को भाषा करी लिखी है। वही मैटर है, उसको अभी यहाँ भाषा करी नहीं, ढूंढारी भाषा में लिख रहे हैं। यह विषय मेरा कर्तव्य इतना ही है जो क्षोभम के अनुसारी तीस शास्त्र का अर्थ को जानी धर्मानुराग तय औरणी के जानने के अर्थी जैसे को मुखतय अक्षर उच्चारी करी देश भाषा रूप व्याख्यान करे तैसे मैं हस्ततय अक्षरनी की स्थापना करी लिखूंगा। इसका अर्थ यह है मेरे जितने बुद्धि में आता है यह संस्कृत विषय वो जानकर मैं देश भाषा में लिखूंगा, अक्षरों से लिखूंगा। जैसे कोई संस्कृत पढ़कर ट्रांसलेशन बोलता है मुख से, वैसे तो मैं अक्षरों में लिखूंगा। बहुरी छंदनी का जोड़ना नवीन युक्ति अलंकारादि का प्रकट करना इत्यादि नवीन ग्रंथकारक के कार्य है, ते तो मोते बने ही नहीं, ताते ग्रंथ का कर्तापना मेरे है नहीं, मैं ग्रंथ का कर्ता नहीं हूँ। यहाँ को कहे तुम तो अमूर्तिक आत्मा हो, तुम करी लिखने का कार्य कैसे बनेगा। ताका समाधान, मैं जो हो आत्मद्रव्य सो अनंत गुण पर्यायनी का पुंज हो, तीनी विषय यानी मैं अनंत गुणों का वो पर्याय का पुंज हूँ, तीनी विषय ने उसमें श्रुत ज्ञान और धर्मानुराग और शक्तिपना इन मेरे पर्यायनी के निमित्त तय लिखने रूप कार्य बने हैं। क्या कहा, मैं तो गुण पर्याय का पिंड हूँ और निमित्त क्या बना, एक तो श्रुत ज्ञान है उनमें, धर्मानुराग रूप बुद्धि है, अनुराग हुआ ना किसी को समझाने का, और शक्ति भी उतनी, ये तो उनसे इतने तो निमित्त उनकी तरफ से हुए। तातई कारण विषय कार्य का उपचार करी मैं लिखूंगा ऐसा व्यवहार मात्र वचन जानना, ये मैं लिखता हूँ ये व्यवहार वचन है। निश्चय विचार तई मैं मेरे ज्ञानादि भावनी ही का करता हूँ, अपने ज्ञान का करता है, पूरा अकर्ता मत मानना, अपने ज्ञान का करता है प्रत्येक, लिखने का करता मैं नाही हूँ। बहुरी प्रश्न यानी कोई प्रश्न यहाँ पूछ सकता है, इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे हुई है सो कहो, तहा कहिए है मेरा ज्ञान स्वभाव है सो ज्ञानावरण के निमित्त तई हीन होई मतिशुत पर्याय रूप भया है। ज्ञान स्वभाव ने मैं तो केवल ज्ञान स्वभावी हूँ परंतु अभी ज्ञानावरण का निमित्त पना बन रहा है, आवरण है तो ज्ञान हीन रूप परिणमित हो रहा है, तो अभी मतिशुद्ध ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। तहां मति ज्ञान करी शास्त्र के अक्षरनी का जानना भया, मति ज्ञान के द्वारा शास्त्रों के अक्षरों को जाना। बहुरी मोह के उदय तय मेरे औपाधिक भाव रागाधिक पाये है, ये मोहनी का उदय निमित्त है क्योंकि निमित्त नैमित्तिक बताना है, तो मोहिनी का उदय है तो वहां तो शुभ राग पाया जाता है, कैसा समझाने का। तहां प्रशस्त राग करी मेरे ऐसी इच्छा भई, प्रशस्त राग के कारण मुझे ऐसी इच्छा हुई जो शास्त्र का अर्थ भाषा रूप अक्षरनी करी लिखी है। क्या इच्छा हुई कि जो संस्कृत आदि शास्त्र जो है उनका अर्थ ढूंढारी भाषा में लिखे, तो इस काल विषय इस क्षेत्र काल विषय मंद बुद्धि घने हैं तिनका भी कल्याण होई, यानी मुझे ऐसा राग आया कि इसका हम हिंदी भाषा में, ढूंढारी भाषा में लिखे, क्योंकि इस क्षेत्र में और इस काल में मंदबुद्धि बहुत है, घनयन बहुत है और उनका भी कल्याण हो जाएगा। और इस कार्य को करते ही, इस कार्य के करने से अप्रशस्त भाव के अभाव करी किछु धर्म प्रवृत्ति होने तई मेरा भी कल्याण हुई। क्या कहते हैं? हाँ, ये जो प्रशस्त राग है लिखने का संबंधी है, उस काल में अप्रशस्त राग का अभाव उस काल में, तो कहते हैं वो उतना अपना भी कल्याण हो जाएगा, यानी धर्म की प्रवृत्ति है, यानी शुभ भाव है, परंतु पाप भाव से बचा जा सकता है, इसलिए अपना भी कल्याण हो रहा है। ताते जैसे ताका लिखना बने सो करना, बहुरी प्रदेशनी को चलावने रूप शक्तिपना मेरे पाई है, यानी अभी आत्म प्रदेशों का चलना, यानी लिखने के कार्य में अपना जो निमित्त बन रहा है उसकी बात करें, अभी वैसी शक्तिपना, यानी वो तो कौन सी शक्ति, अभी है तो विभाव रूप जो कोई क्रिया हो रही है ना शरीर आदि की, आत्म प्रदेशों की, तहां तिस इच्छा के वशतई जैसे तिस कार्य की सिद्धि हुई, तैसे मैं मेरे प्रदेशनी को चंचल करो हो, प्रदेशों को चंचल इच्छा और उसका निमित्त निमित्तिक पना बनता है, तो जैसे लिखने की इच्छा हुई और प्रदेशों का उस रूप से चंचल पना, उस रूप से उसकी प्रवृत्ति हो गई, ऐसे इतने पर्याय तो मेरे हुई है। पंडित टोडरमल जी के जो है ढूंढारी, उसमें से मैं पढ़ के बता रही हूँ, उसमें नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी टीका है, यानी भूमिका उन्होंने बताई है, जो हमने वो शिविर लिया था जैन भूगोल, उसमें से कुछ अंश मैंने पढ़े थे, जो भी आप अंडरलाइन कर रहे हैं वैसे ही, तो बहुत, और आगे भी यहाँ बताया है कि क्यों पढ़ना, इससे अपना क्या फायदा होगा, उसके भी प्रश्न उठा के उसका उत्तर दिया, इसलिए पूरा ही हम पढ़ लेते हैं।
ये बुक का ट्रांसलेशन
नहीं, ये तो डायरेक्ट ढूंढारी भाषा में ट्रांसलेशन है, और उसमें से उन्होंने गणित वगैरह को थोड़ा गौण करके बाकी अंश लिया है सामान्य जनों के लिए, और वहाँ तो पूरा का पूरा उन्होंने हिंदी, अभी उसकी भी भूमिका पढ़ेंगे हम या उसकी प्रस्तावना, तो उस संबंध में भी हमें कुछ जानकारी हो जा रही। वो तो आजकल की तारीख में वो हुआ है, ये तो टोडरमल जी के जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है उन्होंने, सम्यक ज्ञान चंद्रिका है ना, देशभाषा में सारे ग्रंथ लिखे, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, इसका तो अपना स्वाध्याय हो गया, अभी ये त्रिलोक सार को ले रहे, परंतु हम टोडरमल जी का नहीं लेते हुए, वो विशुद्धिमती माता जी का लेंगे, वो हिंदी है, आधुनिक हिंदी है, और ये तो ढूंढारी है। बहुरी पुद्गल द्रव्य भी सक्तिय है और शरीर है, सो पुद्गल परमाणुनि का पिंड है, और नाम कर्म के निमित्त ही शरीर के और मेरे एक बंधन है। देखो सारा ही निमित्त निमित्तिक संबंध बता रहे, पहले बताए कि मेरे में ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, दूसरी बात बताई अभी धर्मानुराग है समझाने का, और तीसरी ये शक्ति, कौन से प्रदेशों के चंचलपना वगैरह करने की, अब पुद्गल की शक्ति बता रहे, पुद्गल में क्या है वो भी शक्ति वाला द्रव्य है, तो शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का पिंड है, और नाम कर्म के निमित्त से शरीर के और मेरे एक बंधन है, क्योंकि वो अभी देहधारी अवस्था में, संसार अवस्था में एक बंधाने ने इकट्ठे वहां अभी रह रहे हैं। तातई मेरे प्रदेश चंचल होने तई तीन की साथी हस्ताधिक शरीर के अंग भी चंचल हो है, वो इकट्ठे बंधे मान लेते हैं, दो जनों को इकट्ठे बांध लिए और एक जन कोई क्रिया करे, कोई एक्शन करता है, तो दूसरे के भी वहां उल्टा भी होगा ना, हमने किसी को पैर को कोई चीज बांध के रखी है, हम चलेंगे तो वो भी चलेगी अपने साथ, वैसे कि अपने प्रदेश चंचल होने के साथ साथ हस्तादि जो शरीर के अंग वो भी चंचल होते हैं। बहुरी हस्तादि अंग करी प्रेरे हुए लेखनी आदि पुद्गल संध है, इसे अपने आत्म प्रदेशों के चंचल पने से अभी हाथ चंचल हो रहे, अभी हाथों की, हाथ में जो पकड़ी हुई लेखनी वगैरह वो भी चंचल होती है, तो हस्तादि अंग करी प्रेरे हुए लेखनी आदि पुद्गल संध है, ते जैसे अक्षर लिखे जाए तैसे क्रियावान हो ही प्रवर्ते, तब अक्षरणी का आकार पत्रादि विषय स्थापन होए, पत्रादि पेज पर जो पन्ना है उसके ऊपर हाथ के लिखे हुए उसका आकार स्थापित हो जाता है, ऐसे यहू निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, ऐसे ही अन्य कार्यनी विषय भी यथासंभव निमित्त नैमित्तिक संबंध जानने, यानी हम जुदे ही है ये सब जानकर ये बातें हो रही है। यथार्थ आपा पर का भेद विज्ञान हो है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जानने से क्या होता है, यथार्थ यानी समीचीन योग्य जैसा है वैसा, जैसे वस्तु स्थिति है रियलिटी है। आपा पर का यानी स्वर पर का भेद ज्ञान होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हर कार्य में लगाना है। अभी दिन भर जो अपने कार्य चल रहे हैं, बच्चों का संभालना है, रोटी बनाना है, जो कुछ चलते हैं, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध जानने ये कह रहे हैं। सो यहाँ लिखने का कार्य विषय मेरे ज्ञानादि पर्याय कारण भय, बहुरी व्यवहार विषय कारण कार्य के संबंध जानी परस्पर उपचार करिए है। ये सारा ही जो हम बोलते हैं वो सारा व्यवहार ही वचन है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर उसमें कारण कार्य का उपचार होता है। तातई व्यवहार करी यानी व्यवहार से, जैसे घटका कर्ता कुंभकार कहिए है तैसे मोकौ लिखने का कर्तापना जानना, इनमें कर्ता नहीं हूँ ये उपचार कथन है। निश्चय करी लिखना आदि कार्य है ते पुद्गल के है मेरे नाही। तातई इस शास्त्र विषय कर्तापने को लिए अहंकार मेरे नाही है, यानी मुझे कोई कर्तापना का अधिकार अहंकार नहीं है। बहुरी यहाँ कोई पूछे है इस कार्य होने विषय अपना और अन्य जीवनी का कल्याण के अर्थी तुम्हारी इच्छा भई, सो कल्याण तो धर्म साधन से होई। अभी यहाँ से प्रश्न, कल्याण किससे होगा, धर्म के साधन से कल्याण होगा। सो इस शास्त्र विषय कोई निश्चय व्यवहार रूप धर्म का तो निरूपण है नहीं, क्योंकि त्रिलोक रचना बताने वाले हैं, इसमें धर्म संबंधी कोई निरूपण ही नहीं है, ना निश्चय का है ना व्यवहार का है। या विषय तो यानी इसमें तो क्षेत्रादि का प्रमाण, ये समझते ना, वा स्थानादि स्थाननी का आकार, अनेक स्थानों के आकार, जैसे नरक के बिल कैसे है, स्वर्ग के विमान कैसे है, के असंख्या उनके आकार कैसे है, वा नारकादि जीवनी का आयु काय इत्यादि निरूपण है। ताकरीने उसके द्वारा धर्म साधना कैसे होई उसका उत्तर, ये फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ हुआ। पहले तो अपने को कर्तापना नहीं वो सिद्ध किया, अब कहते इससे इसमें निश्चय व्यवहार धर्म कुछ है ही नहीं, तो इससे अपना धर्म साधन कैसे होगा, उसका उत्तर। मोक्ष के कारण सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। तहां सम्यक्व प्रथम धर्म है, सो सम्यक्व की प्राप्ति संशय दूरी भये होई। संशय दूर होने पर सम्यक्व की प्राप्ति होगी। सो त्रिलोक का स्वरूप जाने अधो मध्य ऊर्ध्व विषय, यानी अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में जे जे जीव जिन स्थाननी विषय जैसे जैसे पाई है वा जैसी जैसी लोक विषय रचना है, सो सर्व जाने सब तब संदेह न रहे। फिर से यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ तो त्रिलोक की रचना है, कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं उसको वहां जानना होता है, और सब जानने पर, क्योंकि सब कुछ जानने में आ गया, इस विश्व में जो कुछ है वो सब जान लिया, कोई संदेह नहीं रहा। नहीं तो क्या है, तब तक अरे स्वर्ग और नरक होगे कि नहीं होगे, संदेह है। होगे तो क्यों, हमने अभी तक देखे नहीं है, और हमारा साइंस तो ऐसा कहता और ये तो यहाँ ऐसा कहते है, ये संदेह है। तो संदेह जब तक है तब तक सम्यक तो नहीं होगा, क्योंकि सम्यक तो संदेह दूर होने पर होता है। बहुरी अन्यवादी लोक का स्वरूप कल्पित वर्णन करे, अन्यवादी यानी अन्य मति, ये लोक का विश्व का स्वरूप अन्य अन्य, ये कोई शेषनाग के ऊपर है वो किसी ने पकड़ा है धरा है आदि आदि, उनकी अलग अलग भ्रांत कल्पनाएं हैं। लोक का कर्ता ईश्वर को और ब्रह्मा को बतावे है। बहुरी लोक का स्वरूप पुरुषाकार कहे है। बहुरी लोक रचना विषय काछीवा की पीठी ऊपर, कछुए के पीठ के ऊपर आठ हस्ती बतावे हैं, यानी कछुए के पीठ पर आठ हस्ती ने हाथी ऐसा कुछ बताते हैं। शेषनाग को बतावे है, ता ऊपर पृथ्वी बतावे है, यानी वो उसके शेषनाग है और वो शेषनाग ने उसके अपने फण पर मस्तक पर धारण किया, ऐसा कहते वो। ता का प्रमाण तुच्छ कहे है, यानी जो पूरा लोक है और उसका छोटा सा कुछ प्रमाण बताते हैं, तुच्छ है ना, अल्प नहीं के बराबर। ता विषय सात द्वीप सात समुद्र कहे है, यानी पृथ्वी में क्या है, सात द्वीप और समुद्र, इतना ही कहते हैं। तहा जम्बू द्वीप विषय नव खंड और निविषय सात खंड बतावे है, अन्य मतियों की मान्यता बता रहे। बहुरी जम्बू द्वीप के बीची मेरुगिरी कहे है, ताकि दशो दिशा निविषय दश दिक्पालनी की नगरी बतावे है, यह यम की नगरी विषय 24 नरक कुंड बतावे हैं। ये हमने ये पढ़ा भी नहीं, अन्य मतियों का भूगोल या उनकी मान्यता, तो ये उन्होंने तो सारे विविध मत समीक्षा लिखे थे ना चोरमली साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पांचवे अध्याय में, यहाँ तो उन्होंने उनका भूगोल भी पढ़ा था, जैसे उनके तत्व कैसे खोटे वो बताया है वैसे यहाँ पर बता रहे। तहाँ जीव मरी करी जाए है, तब उनका न्याय करना कहे है, यानी वहाँ लेखा जोखा होता है पुण्य पाप का, ऐसा कहते हैं। यम की नगरी है और वहाँ जाता है जी, और वहाँ फिर उसका पुण्य पाप का हिसाब वहाँ लगाते हैं, ये उनकी मान्यता है अन्य मति की। बहुरी अन्न जल अग्नि आदि की नगरी कहे है, अभी क्या होगा वहाँ, अन्न की नगरी जल की नगरी ऐसा कुछ होगा उनकी मान्यता में। बहुरी ज्योतिर्लोक विषय ऋषिनिका व भक्तनिका स्थान कहे है, बहुरी ऊपरी वैकुंठ धाम बतावे, ये उनके मान्यता है, ऊपर वैकुंठ है और नीचे वो कुछ ज्योतिर्लोक में ऋषि वगैरह रहते हैं। ये मराठी में ना वो तुकाराम को वैकुंठ में लेके गए, मरण हुआ तो देव आए थे और उनको वैकुंठ में ले गए, ये उनके ऐसी कथनी है। इत्यादि रचना के विशेष उनके शास्त्र विषय लिखे है। सो जिनमत विषय कहा त्रिलोक का जाने तय, क्या कहे, जिनमत में कहे हुए त्रिलोक का स्वरूप जानने से अन्य मत का कहा लोक का व पुण्य पाप रूप आश्रय बंध के फल नरक सरोगादि कहे तीन का विशेष को जाने व तीन के अभाव ते संवर निजरा होई ताका को फल मोक्ष हो है, यानी यहाँ तो जिनमत का भूगोल यानी वो उसका स्वरूप त्रिलोक का स्वरूप जानने से अन्य मत जो कहते हैं उसका निराकरण हो जाता है, और पुण्य पाप का जो फल है उसके भोगने के स्थान भी है, वहाँ क्या क्या बातें होती वो भी जानने में आ जाती है बातें, और आश्रय बंध के अभाव से संवर निजरा होती है और उसको मोक्ष होता है वो भी जानने में आता है। ताका स्थानादि विशेष को जाने तो तत्व श्रद्धान विषय संशय रहे नाही, क्योंकि स्थान को नहीं जानता है तो उसके बारे में कोई ना कोई संदेह बना रहता है, तब सम्यक श्रद्धान दृढ़ होई, इसको जानने से बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान हो जाता है। दूसरा पॉइंट, पहले ये क्यों बता रहे हैं कि इसमें तो निश्चय धर्म व्यवहार धर्म कुछ नहीं है, तो उसमें पहला पॉइंट क्या बताया अन्य मतियों के जो है और उसमें वो संदेह बना रहता है, तो ये हम जानेंगे तो संदेह दूर होगा। दूसरा सम्यक ज्ञान धर्म है, पहले सम्यक दर्शन धर्म है, यहाँ श्रद्धान दृढ़ होता है वो बात बताए। दूसरा धर्म क्या है, सम्यक ज्ञान धर्म है। सो इस शास्त्र का अभ्यास करने तय मिथ्यात्व की व कषायनी की व हिंसादि पापनी की वृद्धि न हो है, हानि ही हो है, या तातया का अभ्यास आप ही सम्यक ज्ञान रूप है, ये दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट, तीसरा सम्यक चारित्र धर्म है, सो सराग वितराग भेद को लिए है, चारित्र गुण के दो चलते हैं ना धाराएं, सरागता और वितरागता। सो अशुभ प्रवृत्ति छूटी शुभ प्रवृत्ति भये सराग चारित्र हो है, सो इस शास्त्र तय अशुभ का फल नरकादिक जाने शुभ का फल स्वर्गादिक जाने, तो हिंसादि पाप को छोड़ी व्रतादि शुभ विषय प्रवर्तय। बहुरी राग द्वेष जाते उपजे ऐसा विचार दूर भये वीतराग चारित्र हो है, क्या कहना चाहते हैं, ये मुनियों के लिए भी ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान बताए, उसमें तो त्रिलोक रचना का ही वो स्वरूप पर विचार करते हैं, तो कहते इसको इसमें उपयोग लगा है तो कहते हैं राग द्वेष जाते उपजे ऐसे विचार दूर होते हैं। इसमें तो राग द्वेष को उपजने का कोई कारण ही नहीं है। तो जो वितरागता सहित इनको जानने में उसका उपयोग लगा है तो उससे वितरागता की वृद्धि होती है। मुनियों के लिए धर्म ध्यान का विषय बताया, संस्थान विषय धर्म ध्यान तो मुख्यतः मुनियों के होता है। सो लोक का स्वरूप का विचार करते ही किछु इस पर्याय संबंधी प्रयोजन नहीं। इस पर्याय संबंधी मनुष्य भाव संबंधी कोई उसमें प्रयोजन है तो उसमें राग द्वेष हो सकते हैं। अब ऐसा तो कोई प्रयोजन उसमें है नहीं। अरे बिना प्रयोजन राग द्वेष काहे को उपजे? यहाँ कोई अपना कोई उसमें इष्ट अनिष्टता लगती है, हानि हमारे कोई लाभ मिलने वाला है, रुपए पैसे की बात आती है तो राग द्वेष उत्पन्न होने का वहाँ कोई सवाल है। यहाँ तो ऐसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। वितराग भाव स्वयं में वही होई। यहाँ कोई कहे, अभी यहाँ पर कोई प्रश्न उठा सकता है, इतना विकल्प किए वितरागता कैसे रहे? सबका प्रश्न यही है। अब पंचाध्याय में भी बताया ना, स्व में उपयोग रहे या पर में उपयोग रहे उससे कुछ तुम्हें सम्यक की हानि वृद्धि तो होने वाली नहीं है। बंद होगा तो राग से होगा, अपने में उपयोग आप है कि नहीं? आप नहीं आ रहे शाम को? अरे बाप रे, यही वहां चल रही सम्यक दृष्टि हुआ है। उपयोग स्व में रखने से फायदा है कि पर में रखने से फायदा है? शाम को विषय चल रहा है पंचाध्याय में, तो कहते उससे कुछ नफा नुकसान है ही नहीं है, ना लाभ है ना हानि है। लाभ किससे? सम्यक तो चल बना रहता है तो सम्यक तो छूटता नहीं उसको। उपयोग पर में जाने से सम्यक तो छूटता नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व का संबंध उसका प्रतिपक्षी कर्म के साथ है और ज्ञान चेतना तो बनी रहती है। उपयोग रूप ज्ञान चेतना ने स्व में उपयोग लगाना और लब्धि रूप ज्ञान चेतना तो हर समय चल रही है, तो कहते उसमें सम्यक्त्व में कुछ हानि वृद्धि नहीं होती। यहाँ ऐसा सुनने से शौक लगता है थोड़ा। यहाँ वही बताते इतने विकल्प करने पर वितरागता कैसे रहेगी? उसका उत्तर, जड़ भय विकल्प दूर होई। जड़ हो जाओ तो कहते विकल्प दूर हो जाएंगे, यानी वो जानने रूप जो विकल्प है जानने का ही निषेध कर रहा है वो, और विकल्प के नाम पर ये जानना नहीं चाहता, ये उसके अभिप्राय की भूल है। जड़ भय नहीं, जड़ होने पर ही विकल्प दूर हो जाएंगे। आप विकल्प नहीं चाहते, यानी आप जड़ होना चाहते हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। विकल्प अभी हमारे जो चल रहे हैं ना ज्ञान, ये शाम को चल रही है, ये जो उपयोग की जो उपयोग संक्रांति चल रही है, एक द्रव एक को जानते हुए दूसरे को जान रहे हैं, ये विकल्प। विकल्प तो क्षोभम ज्ञान के पर्याय को कहा है वहां पर। वो राग वाला विकल्प अलग बात है, और यहाँ तो विचार जो है ज्ञान जानने वाली बात है उसी को वो जानना नहीं चाहता है विकल्प के नाम पर। ख्याल में आई बात? तो कहते ये नहीं जानना, नहीं जानने का निषेध कर रहा है, तो कहते जड़ होने पर ऐसा हो जाएगा। ज्ञान का स्वरूप तो सविकल्प ही है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? विकल्प सहित जानना, इन्हें अनेक भेद 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 करके जानना, ये ज्ञान का स्वरूप है। अभी शाम को ये लक्ष्मी जी आते, अभी बाकी कोई नहीं आ रहे हैं, तो मम्मी आती है, मम्मी इधर नहीं ना अभी आज, वो ज्यादा पकड़ पाए क्योंकि हमारा वही अभी विषय चल रहा है, विकल्प क्या है और राग और उपयोग की भिन्नता क्या है, और यानी उसमें और ये विषय में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। प्रोडोमल जी साहब वही बात कहना चाहते हैं कि ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प है, केवल ज्ञान को भी सविकल्प कहेंगे। क्यों? पूरे द्रव्य गुण पर्याय उसके अविभाग प्रतिचे सब वर्तमान का भूतकाल का भविष्य का सब कुछ जान रहे हैं, तो सबको इकट्ठा करके बस है इतना ही जान रहे हैं कि पूरा उसके विशेषताओं को जान रहे हैं, हाँ उसी को कहेंगे विकल्प सविकल्प। गेयम का झलकना ही उसके आकार रूप होना कहेंगे। ज्ञान गेयाकार कहा, साकार कहा, ये सारे ज्ञान की विशेषता है कि भेद करके पदार्थों को जानना, वो ज्ञान की अपनी योग्यता है। इसलिए कोई भी ज्ञान हो, सूक्ष्म ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, उसको कहेंगे सविकल्प है। तो ज्ञान का स्वरूप तो सविकल्प ही है, ही लगाया। काहू गेय को जाने ही गांठ, यानी किसी ना किसी गेय को जानेगा ही जानेगा, यानी ज्ञान को सविकल्प ही कहेंगे, आपको लिखना है ना, क्योंकि वो गेयों को विशेषता, स्व भी आया उसमें, पर भी आया और ऊपर में जितने अनंत पदार्थ है सबको जान रहा है, यही ज्ञान की विशेषता है, इसलिए ज्ञान को सविकल्प कहते हैं। यानी काहू गेय को, यानी किसी न किसी गेय को जानेगा ही जानेगा, क्योंकि ज्ञान ज्ञान का कार्य जानना है। तातई यानी इसलिए गेय जानने के विकल्पतई विकटाकता का अभाव न हो है। फिर से गेय जानने के विकल्प, गेय को जानना ही विकल्प है, तो गेय को जानने के विकल्प से वितरागता का अभाव नहीं होता, ये कहना चाहिए, क्योंकि जानने का कार्य चल रहा है ना, गेय को जानने का है, उससे वितरागता का अभाव नहीं होता, ये अपने अभिप्राय में बना बन बैठा है ना। हाँ जरा आप बोलना इसमें।
यहाँ पर जो पंडित जी कह रहे हैं वो तो जिनके सम्यक तो प्राप्त हुआ और वितरागता आवश्यक है उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन लोगों का ये प्रश्न है कि जिनको अभी सम्यक तो ही नहीं हुआ या अन्य अन्य बातों को जानने से मन में विकल्प तैयार होते हैं जुदे जुदे,
तो अन्य अन्य बातों को जानने से, यानी केवल वो शास्त्र की बातें
जानना चाहते,
शास्त्र की बातें जानने से, सुबह से उठकर भोजन को जान रहे हैं, घर गृहस्थी को जान रहे, व्यापार धंधा को जान रहे, पहले उठते ही पहले न्यूज़पेपर हाथ में चाहिए वो जान रहे हैं। देखो यहाँ क्या, फिर मैं ये दो वाक्य मिलकर, अभी एक वाक्य में पढ़ा नहीं उसको भी पढ़ना है। देखो किसी गेय को जानेगा ही जानेगा, इसलिए गेय जानने के विकल्प से वितरागता का अभाव नहीं होता है, गेय जानने के विकल्प से, तो जिसते राग द्वेष उपजे ऐसे विकल्प नीते वितरागता का अभाव हो है। जिनके कारण राग द्वेष होते हैं ऐसे जो विकल्प है उनसे वितरागता का अभाव होता है। ये एक गेय से दूसरे गेय को जानने लगा उससे वितरागता का अभाव नहीं हो रहा, यही बात पंचाध्याय में चल रही, स्व में रहा उसका उपयोग, अभी वो पर गेय को जानने लगा, तो स्व को जानना है ने वो वितरागता, और पर को जानने से ऐसा नहीं है, पलटा ना वहां उसको, गेय पलट गया, गेय पलटा इसी को विकल्प कहा। लक्ष्मी को तो समझाने की जरूरत नहीं, वो तो सुन रही दोषा, पहले स्व को जान रहा था अभी गेय पलटा, उपयोग की संक्रांति हुई इसी को विकल्प कह दिया है, ऐसे विकल्प से वितरागता की हानि नहीं होती है, परंतु ऐसे विकल्प है जो रागद्वेष रूप विकल्प है, जिसको विकल्प उसको भी कहते हैं, ऐसे विकल्पों से रागद्वेष होते हैं और रागद्वेष होते हैं वितरागता की हानि होती है। हम जानने मात्र से ही वो वितरागता का अभाव होता मान अभिप्राय में पड़ा है सबके भी, इसलिए जानने का निषेध हो रहा है, करना नियोग को जानने का निषेध हो रहा है, हमको विकल्प नहीं चाहिए, हमको विकल्प नहीं चाहिए ऐसा कहकर ज्ञान का निषेध कर रहे हैं। कितना स्पष्ट लिखा है, ऐसे इस शास्त्र तय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म की प्राप्ति हो है, तीनों ही धर्मों की प्राप्ति बताई इस शास्त्र के ज्ञान से, जिस तय जीव का कल्याण हो है, ताते या को लिखने की इच्छा भई है। ऐसे यहाँ प्रश्न उत्तर का प्रयोजन यहू है, इस शास्त्र के अभ्यास को कार्यकारी जानी, कार्यकारी जानकर, उपयुक्त कार्यकारी वो अपने लिए कल्याणकारक है, या का पढ़ना वाचना सीखना सुनना इत्यादि अभ्यास विषय तत्पर रहना योग्य है। पढ़ना है वाचना है, वाचना पढ़कर सुनाना है, सीखना है सुनना है, ये सारे कल्याणकारी बात है। बहुरी यहाँ को कहे तुम्हारी बुद्धि तो हीन है, ऐसे गंभीर शास्त्र की टीका कैसे करोगे, उसका उत्तर टोडरमल जी को कोई कहता है तो उसको उत्तर देते हैं, मूल शास्त्र कर्ता तई टीकाकार की बुद्धि हीन हो ही है, मूल जो संस्कृत प्रकरण, तो टीकाकार लिख रहे तो उनकी बुद्धिहीन है, परंतु सर्व टीकाकार अपनी बुद्धि अनुसार टीका करे है, तो इसे मैं भी अपनी बुद्धि अनुसार टीका करूंगा। बहुरी को कहे कि कहीं चुकोगे तो दोष लगेगा। ताका उत्तर, जैसे यत्नाचारी मुनि के प्रमत्त योग बिना हिंसा होते भी दोष नहीं लागे है। ये मालूम है क्या हिंसा किसको कहना? प्रमत्त योग के कारण, प्रमत्त योग ने असावधानी के कारण जो विराधना होती जीवों की, उसको हिंसा कहते। मुनिराज न देखते हुए चले तो उनके तो हिंसा है, परंतु सावधानी पूर्वक जा रहे हैं, देख देख कर चार हाथ जमीन देख कर जा रहे हैं, और पैर रखने को जाए और नीचे कोई पैर के नीचे आकर दब भी जाए, कोई भाग के कोई कीड़ा मकोड़ा आता है, तो उनको हिंसा का दोष नहीं है। यहाँ क्या लिखा? यत्नाचारी मुनि यानी प्रयत्न पूर्वक चल रहे, यत्नाचारी ने समिति पूर्वक चल रहे है, प्रमत्त योग बिना, उनके वो प्रमत्त योग नहीं है वहां पर, यानी असावधानी नहीं है, हिंसा होते भी दोष नहीं लागे, यानी वहां जीव तो मरा ना, फिर भी उनके दोष नहीं है। तैसे जिन आज्ञा को प्रमाण करण हारा कई, जिन आज्ञा ही प्रमाण मानने वाले के विपरीत अभिप्राय बिना, यानी उनके कोई विपरीत अभिप्राय से तो नहीं लिख रहे, मूल धारा को अपने मन कल्पना से कुछ नहीं लिख रहे, को सूक्ष्म अर्थ विषय अन्यथापना होते भी दोष नहीं लागे है। किसी सूक्ष्म कथन में अगर कोई दोष भी लगे तो उनको उसका पाप नहीं लगता है। ऐसे विचार करी टीका का प्रारंभ करो हो। उन्होंने अन्यत्र और भी लिखा है कि ऐसे कोई जानकार होते हैं, उनको वो बात पकड़ में आती है तो उसको सुधार कर देते हैं, और उसका ये कर्तव्य भी है। वो पहले भी बताया था उन्होंने जीवकांड वगैरह के टीका में। इस श्रीमद् त्रिलोकसार नाम शास्त्र के सूत्र नेमिचंद्र नामा सिद्धांत चक्रवर्ती करी विरचित है, यानी मूल ग्रंथ सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है। सिद्धांत चक्रवर्ती किसको कहते मालूम है? चक्रवर्ती कितने खंड का अधिपति होता है? 6 खंड का। और हमारा जो मूल ग्रंथ है षटखंडागम, वो षटखंडागम यानी जो हमने धवला जयधवला पढ़े, जयधवला नहीं धवला और महाधवला पढ़े ना, वो षटखंडागम है। धवला तो टीका है और महाबंध तो मूल छठा खंड है। तो कहते हैं कि ये षटखंडा के गम के जो विशेषज्ञ है उनको कहेंगे सिद्धांत चक्रवर्ती, क्योंकि कर्णान योग के ये मूल ग्रंथों को कहते सिद्धांत शास्त्र, और उसके षटखंड है और उस पर इनका साम्राज्य है, तो उनको कहेंगे सिद्धांत चक्रवर्ती। तो कहते ये मूल सूत्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखे है। तिनकी संस्कृत टीका का अनुसार ले ही इस भाषा टीका विषय अर्थ लिखूंगा, यानी उस पर जो संस्कृत टीकाएं हुई है उसके अनुसार इसके लिखेंगे। कहीं कोई अर्थ न भासेगा ताको न लिखूंगा, कहीं समझने के अर्थ ही वधाई करी लिखूंगा। ऐसी बात उन्होंने जीवकांड आदि में भी लिखी थी, यानी जहां कोई समझने के अर्थ ही प्रसंगानुसार कोई विषय को अधिक खोलकर भी बताएंगे, उसका विस्तार से वर्णन भी करेंगे। कोई चीजें नहीं समझ में आती तो उसके बारे में उन्होंने पहले भी लिखा था, इसका अर्थ मेरे बराबर समझ में नहीं आई, वो गमन विकुण विकुवना आदि कुछ ऐसी बातें थी ना, तो वहां उन्होंने लिखी थी जीवकांड में। ऐसे यहू टीका बनेगी ता विषय जहां चूक जानो तहां बुध जन सवारी शुद्ध करियो, है ना। इसमें कोई बात ख्याल में आती है, किसी के पकड़ में आती है तो ये उसको शुद्ध कर लेना, ऐसा कहते हैं। छदमस्त हाँ बुध जन है ना, उनको सवारी शुद्ध करियो, नहीं उनको इसको पकड़ में आ जाए बात तो उसको सही करना चाहिए। छदमस्त के, ये छदमस्त क्या होता है? हाँ अल्पज्ञ, 12वें गुणस्थान तक के जीव, ये निगोद उसमें आएगा नहीं आएगा? आएगा आएगा। छदमस्त के ज्ञान सावरण होए, सावरणे ने आवरण सहित, तातई चूक भी पड़े, चूक भी पड़े ने चूक भी सकता है, पड़े ने पड़े, चूक पड़ती है ने उसमें भूल हो सकती है। जैसे ही जाको थोड़ा सूझे और वह कहीं विषम मार्ग विषय स्खलित होगी तो बहुत सूझने वाला वाक्य हास्य न करे। क्या कहते हैं, जिसको थोड़ी समझ है और वो गिर भी जाए या कुछ उसे चुपता है तो अधिक समझदार जो है उसके हास्य नहीं करता है, उसकी जो उपहास नहीं करता उसका। दयालु होई तिस अर्थ को शुद्ध ही करोगे। बहुरी, बाल स्वभावी हास्य करो तो करो, जो बाल स्वभावी है यानी जो मूर्ख है तो वो तो हंसेंगे, तो कहते हंसेंगे तो हंसेंगे, प्रयोजन वाला तो क्रिया करे हीगा, उनके भय ते अपना कार्य करना छोड़े नहीं। यानी तो वो वही है उसका प्रयोजन, तो वही करेगा, वो तो हास्य करेगा, तो उसके भय से अपना कार्य करना छोड़े नहीं। ऐसे विचारते ही इस टीका करने विषय मेरे उत्साह ही बढ़ते हैं। अब इस शास्त्र के वक्ता और श्रोता कैसे चाहिए सो कहिए। अब ये मूल पॉइंट, एक एक महत्व का पॉइंट है। प्रथम तो जिन वचन के श्रद्धानी होई। अब जिन वचन है, जिनेन्द्र भगवान ही क्या है मालूम नहीं, उनके सर्वज्ञपना का श्रद्धा नहीं है तो उनके वाणी पर तो ये जिसकी परम श्रद्धा है वही इसको सुन पाएगा, पछा पाएगा, ये तो पहले प्रश्न उठाएगा ना, हमको सिद्ध करके दिखाओ, हमारे साइंटिस्ट ने ये बात सिद्ध की है, अभी इसके साथ मिलान करके हम दिखाओ तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। जो श्रद्धानी न हो है तो प्रत्यक्ष अनुमान तय अगोचर त्रिलोक का स्वरूप ताको सत्य कैसे जाने। क्या कहते हैं, यदि वो जिनेन्द्र की वाणी का श्रद्धानी नहीं होता है तो ये जो प्रत्यक्ष भी ये त्रिलोक की बातें किसी के प्रत्यक्ष तो नहीं होती हमारे आपकी, और कहते हैं अनुमान से भी ये सिद्ध नहीं हो सकती है। द्रव्यान योग में तो कितने अनुमान के परीक्षा के कथन बताते हैं, उससे वो बातें सिद्ध हो सकती है, परंतु यह अनुमान से सिद्ध करने की बात ही नहीं है। तो ऐसे जो प्रत्यक्ष से भी अगोचर है, प्रत्यक्ष भी जो जानने में नहीं आते, अनुमान से भी जो जानने में नहीं आते, ऐसे जो त्रिलोक का स्वरूप उसको सत्य कैसे जानेगा। पहला पॉइंट क्या है, जिन वचन का श्रद्धा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, धर्म बुद्धि होई। जो धर्म बुद्धि न हो है, तो शारीरिक प्रयोजन तो या में कुछ है नहीं, काहे को या विषय लगे। इसमें तो कुछ शारीरिक प्रयोजन नहीं है, योगा विगा करते तो कुछ शारीरिक प्रयोजन है, उसमें तो कुछ तो चल जाएगा है ना, इसमें तो कुछ बातें तो है ही नहीं है। और जो पांडित्य प्रकट करने को ला गई तो कषाय भाव ते उल्टा बुरा हो है, अपना पांडित्य विद्वान हूं मैं बताने के लिए करता है तो वो तो कषाय है, उसका तो बुरा ही होगा। तीसरा पॉइंट, गणितादि ज्ञान सहित हो है। जो ऐसे न हो तो इस ग्रंथ का अर्थ पर्याय न भासे। सामान्यपने गणित का जैसे गुणकार भगार वगैरह वगैरह, यानी बहुत गहरे गणित तो उन्होंने अलग निकाले हैं, फिर भी सामान्य ज्ञान उस संबंधी चाहिए। चौथा, प्रश्न उत्तर करी के कथन का निर्णय करी, तत्व ज्ञान दृढ़ करने ही का अभिप्राय जिनके होई, कोई वादादि का अभिप्राय न होई ऐसे होई है। यानी कोई वाद करने के लिए इसको पढ़ सुन, यानी वक्ता भी और श्रोता भी, वाद के लिए मैं सच्चा हूं तुम खोटे इसके लिए ये बात नहीं है। जो ऐसे न होई तो ग्रंथ अभ्यास का फल उपयोग निर्मल करना ताको न पावे। उपयोग की निर्मलता के लिए इसको पढ़ना पढ़ाना है। बहुरी, क्षमा संतोष न्याय प्रवृत्ति आदि गुण सहित होई, ये सभी शास्त्रों के लिए लागू होगा, अकेले भूगोल के लिए नहीं है। जो ऐसे न होई तो शोभा न पावे इत्यादि गुण सहित वक्ता श्रोता जानने। बहुरी, कोई कहे इस शास्त्र की प्रमाणता कैसे करिए। अभी ये सब जगह यही पूछा जाता है कि हमारा जो अभी वर्तमान का जो हम जान रहे जितना भूगोल और यहाँ, उसका कैसा मेल बिठाना है, इसके लिए तो आप जो कहते उसके लिए प्रमाण क्या है। यहाँ कहते हैं शास्त्र की प्रमाणता कैसे करिए, इसको हम सही कैसे मानेंगे। ताका समाधान, संभवत बाधक प्रमाण के अभाव से या का प्रमाण करिए। यानी बाधक प्रमाण नहीं है, इसको बाधा आने वाले कोई प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते। इस संभवत बाधक यानी इसके संभवने वाले, पॉसिबल, कोई बाधक प्रमाण तो अवेलेबल नहीं है। जिस अर्थ का निषेध करण आरोप, यानी जो कोई स्टेटमेंट किया है उसके निषेध करने वाला कोई प्रमाण संभवता होई, ताका नाम संभवत बाधक प्रमाण है। यानी कोई बात हम बता रहे हैं और उसको निषेध करने वाला कोई प्रमाण आपके पास सिद्ध है, यानी हमने नहीं जाना, साइंटिस्ट को नहीं मिला, वो बात नहीं हो सकती। कोई अन्यथा किसी उसको सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण मिले तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। सो इस शास्त्र विषय जो व्याख्यान है, सो कोई प्रमाण करी विरुद्ध न भासे है, ताते या का प्रमाण कीजिए है। और प्रमाण कौन कौन से होते हैं हमने देखे थे, सम्यक ज्ञान प्रमाण है, आगम प्रमाण है, भगवान की वाणी प्रमाण है, उसके द्वारा तो कोई बाधा नहीं आती उसमें। बहुरी प्रश्न जो किया कि प्रमाणता किस प्रमाण करी होई, ताका उत्तर, जो अर्थ यानी जो पदार्थ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर होई, ताको तो प्रत्यक्ष अनुमान करी प्रमाण करना, जो जो चीजें प्रत्यक्ष द्वारा अनुमान द्वारा प्रमाण कर सकते हैं तो उसको करना। जैसे हमने धूम और अग्नि देखी है, अग्नि के बिना धूम नहीं होता, तो जहाँ धूम है वहाँ अग्नि होगी ही, तो ये अनुमान भी लगा सकते, वो कहीं हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं। बहुरी जो प्रत्यक्ष अनुमान ते अगोचर हो, यानी उससे जाना नहीं जाता है, ताको आगम प्रमाण करी मानना। आगम प्रमाण ये बहुत बड़ा प्रमाण है, सही प्रमाण, क्योंकि भगवान की वाणी है, इसलिए आगम प्रमाण कहते हैं, उसके लिए और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कौ कहे अन्य मत के आगम अप्रमाण, तुम्हारा आगम प्रमाण ऐसा कैसे मानिए, हाँ वो तो अप्रमाण और आपके तो प्रमाण, अरे वाह वाह। उसका उत्तर, आगम विषय कई अर्थ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर है, कई अगोचर है, तहां प्रत्यक्ष अनुमान गोचर अर्थ करी आगम की परीक्षा करनी। आगम की परीक्षा करनी है, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जो बातें सिद्ध हो सकती है उसके द्वारा हम आगम की परीक्षा कर सकते हैं। भगवान के बारे में बताया है, सुपर के बारे में बताया है, जो कोई मोक्ष मार्ग के बारे में जो बताया है, जो हमने प्रत्यक्ष अनुभव की और अनुमान की बातें हैं, वो तो वहां से हम जान सकते हैं। जिस मत के आगम विषय प्रत्यक्ष अनुमान गोचर ही अर्थ विरुद्ध भासे, क्या कहते हैं, जिस मत के यानी अन्य मतियों के जो आगम है उनमें जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जो बातें जाती जानी जाती है उसी में विरोध है। कहीं हिंसा नहीं करनी चाहिए कहेंगे और कहीं हिंसा का पोषण करेंगे, कहीं ब्रह्मचर्य की बात अच्छी बताएंगे तो कहीं उसके जिसको पुत्र नहीं उसको स्वर्ग का एंट्री नहीं ऐसा कहेंगे, उन्हीं के आगम में ये विरोधाभास भाषित होता है, ये कहना चाहते हैं। तो जिस मत के आगम में प्रत्यक्ष अनुमान गोचर ही अर्थ विरुद्ध भाषे, तो किसका कहा अगोचर अर्थ कैसे प्रमाण करिए, जो प्रत्यक्ष में दिखने वाली बात है उसमें झूठ कल्पना की है, तो जो प्रत्यक्ष नहीं दिखती ऐसे मेरु पर्वत है जो अन्य है उसकी बात है वो कैसे सच्ची हो सकती है। और जिस मत का आगम विषय प्रत्यक्ष अनुमान गोचर अर्थ सत्य ही कहे भाषे, तो किसका कहे अगोचर अर्थ भी सत्य ही होसी। सो ऐसे परीक्षा किए अन्य मत के आगम अप्रमाण जैन मत के प्रमाण प्रतिभासे है। सो यहू शास्त्र जैन मत का आगम है ताते प्रमाण, ये आगम है क्योंकि मुनियों ने लिखे हुए वो सर्वज्ञ की जो परंपरा धारा चली है उसके अनुसार लिखे हुए ये शास्त्र है, इसलिए ये आगम है, ये प्रमाण है। या प्रकार इस शास्त्र को फलदायक जानी वक्ता श्रोता का लक्षण युक्त होई वाचो सुनो, यानी ये प्रयोजनभूत है, ये कल्याणकारी, ऐसे एक तो समझना और वक्ता श्रोता कैसा होना चाहिए वो भी पहले बताया कि वो तो जिन मत का श्रद्धा नहीं होना चाहिए, वाचो सुनो और प्रमाणिक जानी या का श्रद्धान करो, या के अभ्यास तई तत्व श्रद्धानी होई, तत्व ज्ञान को बधाई यानी बढ़ाकर रागादिक को घटाई मोक्ष मार्गी होऊ, यानी होना चाहिए आपको, हो जाओ ऐसा कहते हैं। तिस साधन तई तुम्हारे निरुपाधि आत्म स्वभाव की सिद्धि है लक्षण जाका, ऐसा सिद्ध अवस्था प्रकट हो। ये उन्होंने भूमिका के रूप में इतनी सारी बातें लिखी है, क्योंकि हमारे बारंबार ऐसे ही प्रश्न थे, विकल्प होते हैं, ये क्यों करना, इसे जानने से अपना क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, आदि आदि बातें इसमें आती है। अब यहाँ जो हमारे हाथ में जो त्रिलोकसार ग्रंथ है, अब यहाँ हम पढ़ेंगे ये जो ये पहले तो त्रिलोकाकृति लिखी है उसको तो जाने देते थे। ये धर्मसागर जी महाराज जो है और श्रुतसागर जी, उसके आगे के पेज पर उन्होंने शुभाशीर्वाद के रूप में कुछ लिखा है, मिला ये शुरुआत में ही है, दो चार पेजेस में। देखो, आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित, बहुत आगे गया, जहाँ फोटो है दो महाराजों के उसके बाद के दो पेजेस, अरे उसमें नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है, हाँ जो कॉपी की उसमें है, मैं पढ़ूंगी। हाँ पढ़ना, त्रिलोकसार ग्रंथ कर्णानियों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आचार्य श्री ने तीन लोक का विवेचन किया है। पंडित टोडरमल जी ने इस ग्रंथ का ढूंढारी भाषा में अनुवाद किया था। श्री माधव चंद्राचार्य कृत संस्कृत टीका के आधार पर आरिका विशुद्धमती जी ने शुद्ध हिंदी में इस ग्रंथ का पुनः अनुवाद किया है एवं ग्रंथ में आगत गणित के विषय को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। स्वाध्याय जनों के लिए त्रिलोक संबंधी विषय को भली भांति समझने में यह ग्रंथ सहायक सिद्ध हो, यही हमारा शुभाशीर्वाद है। कौन सा हाँ नहीं नहीं यहाँ अभी जो पुस्तक है ना और हमारे पास जो जीरोक्स है उसमें कोई डिफरेंस है, अभी जो निवेदन है वो अब उसके आगे है। अब वहाँ निवेदन कोई प्रकाशन प्राप्ति का निवेदन है, अब उसके लिए संपादित वगैरह करने की बात है। अभी इसमें अलग अलग प्रतियों को यूज किया है उन्होंने। देखो संपादन सामग्री जहां लिखा है प्रस्तावना उसके आगे होगी ना,
सात नंबर पे
प्रस्तावना आगे है इसको मेरे में, आपके पास कौन सा है वो? संपादन सामग्री लिखा है
सात नंबर पर।
अलग अलग प्रतियां उन्होंने यूज की है जो आगे उसके फोटोकॉपी भी लगाई है। एक है प प्रति, ये पुणे में एक भंडारकर इंस्टीट्यूट है वहां से ये प्राप्त है। ये कौन कौन से प्रति, अलग अलग टाइम में अलग अलग जो प्रतियां, पहले तो हस्तलिखित प्रतियां थी तो उसको किसको आधार माने, हस्तलिखितों में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है तो कहीं कोई बात नहीं, तो कौन सी हो सकती है शुद्ध उसमें से, इसका वो सब प्रतियों को पढ़कर उसका निर्णय किया जाता है। बहुत सारे लोग भी बैठते हैं तो उसमें क्या है क्या नहीं है वो तो उसको पता है, उन्होंने उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। वो है प प्रति, ब प्रति ने अलग पन्नालाल सरस्वती भवन ब्यावर की है, वो पंडित हीरालाल शास्त्री के सौजन्य से प्राप्त हुई, आदि आदि बातें। उसके बाद उन्होंने यहाँ लिखा, देखो प प्रति, देखो उस समय के अक्षर कैसे होते थे, उसमें कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, ऐसे एक के एक आगे, और वो लिपि भी थोड़ी पुरानी है, ऐसे को पढ़कर इसका सारा अनुवाद किया है। नीचे ब प्रति लिखी है, फिर ज प्रति लिखी है, स प्रति लिखी है, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी छोटी है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग प्रतियों को उन्होंने पढ़कर फिर उसके आधार से यहाँ कर दिए हैं। अभी किसने लिखा है? आद्य मिताक्षर विशुद्ध मति जी ने। आद्य मिताक्षर ने शुरुआत में मिताक्षर ने थोड़े शब्द अपने, दो शब्द हम जिसको कहेंगे ना शुरुआत के उनके, ये विशुद्ध मति माता ने
अक्षर,
मिते ने थोड़े, आद्य ने शुरुआत के थोड़े अक्षर ने, हम कहते हैं दो शब्द लिखेंगे ऐसा। अभी उन्होंने क्या क्या यहाँ लिखा है, उस कैसे उन्होंने उनको उसकी बात यहाँ लिखी है, आगे बढ़ेंगे हम, प्रस्तावना पढ़ेंगे। देखो मिला, श्री समंत भद्र स्वामी ने समस्त जैन वांग्मय को प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग में विभक्त किया है। कर्णानियोग का लक्षण लिखते हुए उन्होंने कहा है, लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश चतुर्गति नांश्च आदर्शमिव तथा मति अवैति कर्णानि योगंच। यानी लोक और अलोक के विभाग को, युगों के परिवर्तन को, लोक अवलोक का विभाग यानी तीन लोक की रचना, युगों का परिवर्तन यानी वो जो काल चक्र, तथा चारों गतियों के लिए दर्पण के समान है, ऐसे कर्णानियोग को सम्यक ज्ञान जानता है। तात्पर्य है कि जिसमें लोक अलोक के विभाग का, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नामक काल के भेदों का, चार गतियों का, तथा चकार से गुणस्थान मार्गणा जीव समास कर्मों की बंध उदय और सत्व आदि अवस्थाओं का वर्णन हो, उसे कर्णानियोग कहते हैं। कर्णानियोग के ग्रंथों का जैनागम में बहुत विस्तार है। षटखंडागम, त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति, त्रिलोक सार, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार तथा क्षपणासार आदि ग्रंथ तो स्पष्ट ही कर्णानियोग के ग्रंथ है, परंतु तत्वार्थ राजवार्तिक के तृतीय और चतुर्थ अध्याय, ये तत्वार्थ रात वार्तिक जो है वो तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तत्वार्थ सूत्र में तीसरे चौथे अधिकार में यही भूगोल आदि का वर्णन है, तथा हरिवंश पुराण का लोक वर्णनाधिकार, लोक वर्णन के बारे में हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण मालूम है किसकी कथा है? सुनाए सुनाए, बोलो बोलो। हाँ क्या
बारे में
वो पांडव पुराण, सॉरी उसका नाम है पद्म पुराण, रामायण है वो पद्म पुराण, हरिवंश पुराण तो वो श्री कृष्ण आदि का है ना। हाँ उसमें लोक वर्णनाधिकार जो है उसके अंदर है, हमने ये भी देखा था ना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, बारह भावना का वर्णन है उसमें, लोक भावना में यही वर्णन है सारा, लोक भावना ने त्रिलोक संबंधी उसमें विचार किया है, उसका वर्णन किया है। आवाज नहीं आ रही आपकी?
आप जो पढ़ रही हैं उसका पेज नंबर?
हाँ उसको प्रस्तावना नाम है, 13 नंबर है आपकी पुस्तक में। आगे पढ़ेंगे श्री, हाँ दो तीन पेज बाद है प्रस्तावना जिसको लिखा है। अभी तीसरा पैराग्राफ पढ़ रही मैं। श्री 108 दिवंगत आचार्य शिवसागर जी महाराज से दीक्षित, श्री 105, देखिए 108 ये मुनियों के लिए 108 ये पदवी दी जाती है, जैसे भगवान के लिए 1008 लिखते हैं, मुनियों के लए 108 लिखते हैं और आर्यिकाओं के लिए 105 लिखते हैं। आप नहीं तो कहेंगे 108 महाराज हुए क्या, 105 हुए क्या, ये उनकी एक पदवी होती है। जैसे श्री लिखते हैं वैसे 108 105 ये लिखने की पद्धति है। एक बार क्या हुआ देवलाली में, वो 109वीं जन्म जयंती थी गुरुदेव की और वहाँ 109 आंकड़ा कुछ लिखा था, तो हमारे वो कोई आए थे ना, वो तो चाणेकर, उन्होंने पूछा ये 109 कौन सी पदवी है, हमने तो 108 सुनी है, 105 सुनी है, 109वीं पदवी कौन सी है। नहीं बोला 109वीं जन्म जयंती कोई पदवी नहीं है उनकी।
1008 क्यों बोलते हैं
भगवान को, उनके 1008 लक्षण ऐसे बताते ना,
हाँ
उनके लक्षण होते हैं शुभ लक्षण। तो ये विशुद्ध मती जी ने श्री 108 आचार्य कल्पक सुत सागर जी महाराज के सानिध्य में रहकर चारों अनुयोगों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। धवला जयधवला महाबंध के गहन अध्ययन के बाद आपने सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य द्वारा विरचित त्रिलोकसार ग्रंथ का सूक्ष्म दृष्टि से स्वाध्याय किया और स्वाध्याय के बाद प्रस्तुत टीका की रचना की है। अब उसका आधार क्या है त्रिलोकसार का, त्रिलोकसार करणानुयोग का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना प्रौढ़ और अपना विषय प्रतिपादन करने में पूर्ण दक्ष है। इसमें जैन भूभाग से संबंधित सभी विषय समाविष्ट है। अब गोल ने कहा भूभाग कहा इसका आधार तिलोय पन्नति, जिसका नाम है त्रिलोक प्रज्ञप्ति और तत्वार्थ राजवार्तिक के तृतीय तथा चतुर्थ अध्याय है। कहीं कहीं जिनसेन के हरिवंश पुराण के लोक वर्णाधिकार का भी आधार लिया जान पड़ता है। जहाँ त्रिलोकसार त्रिलोक प्रज्ञप्ति आदि पर आधारित है, वहाँ यह भी अपने पीछे बनने वाले अनेक ग्रंथों की आधार भूमि बना है। त्रिलोकसार की व्यवस्थित वर्णन शैली से जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिकार भी प्रभावित जान पड़ते हैं। यही कारण है कि जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में त्रिलोकसार की कितनी ही गाथाएं जो कि त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उपलब्ध होती है। लोक विभाग के रचयिता सिंह सूरर्षि ने भी अपने ग्रंथ में कितने ही स्थलों पर त्रिलोकसार की गाथाएं उद्धृत की हैं। अब त्रिलोकसार ग्रंथ में 1018 गाथाएं हैं जो नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती की। संपूर्ण ग्रंथ 6 अधिकारों में विभक्त है, लोक सामान्य अधिकार यानी इन जनरल लोक का स्वरूप, भवनाधिकार भवनवासी की बात लिखेंगे, व्यंतर लोकाधिकार ज्योतिर्लोकाधिकार वैमानिक लोकाधिकार और नरतीर्यक लोकाधिकार। सब अधिकारों का प्रतिपाद्य विषय अधिकारों के नाम से ही स्पष्ट है, फिर विषयानुक्रमणिका के द्वारा भी उसे स्पष्ट किया गया है। प्रारंभ में लोक का स्वरूप बतलाते हुए कहा है यह लोक अकृत्रिम है, अनादि निधन है, स्वभाव से निवृत्त निवृत्त ने रचित है, जीवा जीवादि द्रव्यों से युक्त है और नित्य है। ये गाथा है उसकी, यानी इसके द्वारा दूसरे किसी ने निर्मित नहीं है, किसी के माथे पर बैठी है ऐसी भी बात नहीं, सब सिद्ध किया उन्होंने। आकाश के जितने भाग में जीव पुद्गल धर्म धर्म और काल द्रव्य का अस्तित्व रहता है, उतने आकाश को लोक और शेष आकाश को अलोक कहते हैं। लोक का क्षेत्रफल 343 राजू है, ये घन राजू चाहिए हाँ, क्योंकि अभी और अलोक सब ओर से अनंत है। सामान्य रूप से लोक पुरुषाकार तथा 14 राजू ऊंचा है, वह अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से 3 प्रकार का होता है। अधोलोक अर्ध मृदंगाकार यानी मृदंग को आधा करो, मृदंग समझते वो डमरू जैसा होता है वो, ये मृदंग तो ऐसा हुआ, अर्ध मृदंग करेंगे उसको उल्टा करेंगे, ये अर्ध मृदंगाकार। ऊर्ध्वलोक मृदंगाकार और मध्यलोक झल्लरी के आकार है, झल्लरी नहीं थाली जैसा कुछ, ऐसे गोल गोल है। हाँ झलर यानी वो बजाते हैं ना वो झलर वो उसके हाँ वो अलग हाँ लोक सामान्य के वर्णन में आचार्य ने मान के मान यानी जिसको हम कहेंगे ना माप संख्या मान वगैरह कहते मान यानी मेजरमेंट लोक और लोकोत्तर के भेद से जो हमने जीव कांड के पर्याप्ति प्ररूपणा में सीखा था कि लौकिक गणित और अलौकिक गणित लौकिक मान और अलौकिक मान कहा था उसको फिर उसमें द्रव्यमान क्षेत्रमान वगैरह की बात की थी छह भेद निरूपित किए हैं मान उन्मान अवमान गणिमान प्रतिमान और तत्प्रतिमान गणना के मूल रूप में संख्यात असंख्यात और अनंत इस प्रकार तीन भेद किए हैं इनमें संख्यात का एक ही भेद है एक ही भेद है उस सबको मिलकर संख्यात ही कहेंगे फिर उसमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट करेंगे वो बात अलग है असंख्यात के परिता संख्यात युक्ता संख्यात तथा असंख्यात असंख्यात के भेद से तीन भेद है इसी प्रकार अनंत के भी परितानंत युक्तानंत और अनंतानंत के भेद से तीन भेद है संख्यात का एक इसके तीन तीन इसे टोटल सात हुए संख्या के इन सात भेदों के जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन तीन भेद होते हैं अतः विस्तार से गणना संख्या के 21 भेद होते हैं ये सारा विषय हमारे लिए हम पढ़ चुके हैं बहुत बार जीव कांड का विषय है यह पर इस प्रकरण में आचार्य ने गणना और संख्या की परिभाषा को निम्नलिखित गाथा द्वारा स्पष्ट किया है एया दिया गणना बिया दिया हवन की संख्या तिया दीनम निम्ना कदित की सन्ना मुने दौवा एकाधिक को गणना एक से लेकर है वो उसको गणना कहेंगे यानी काउंट कहेंगे दो अधिक को संख्या यानी संख्यात के भेद दो से शुरू होते हैं तीन आदि को कृति कहते हैं अर्थात एक और दो में कृतित्व नहीं है क्योंकि जिस संख्या के वर्ग में से वर्गमूल को घटाने पर शेष रही संख्या का वर्ग करने पर उस राशि के अधिक राशि उपलब्ध हो वह कृति है देखो क्या कहते हैं दो संख्या को कृति नहीं कहा क्यों अभी हम परिभाषा फिर पढ़ेंगे जिस संख्या के वर्ग में से अभी एक का तो वर्ग करो कुछ भी करो वो बात छोड़ दो पर दो की हम बात करेंगे उस वर्ग में से दो की दो संख्या है ना दो के वर्ग में से दो का वर्ग चार चार में से वर्गमूल को घटाने पर जिस संख्या के वर्ग में से वर्गमूल को घटाने पर शेष रही संख्या का वर्ग करने पर यानी अभी दो का वर्ग चार में से उसका वर्गमूल घटाना है दो का वर्गमूल घटाना और फिर शेष रही संख्या का वर्ग करना उस राशि से अधिक राशि उपलब्ध हो वह कृति है अब ये तीन के करो तो हम आपको ख्याल में आ जाएगी तीन का वर्ग नौ होता है हाँ उसमें से वो घटा दो तीन का वर्गमूल घटा दो हाँ यानी दो से कुछ कम हो जाएगा ना वो घटाने पर जो संख्या रहेगी उसका वर्ग करो उन्होंने ये बात की तीन का वर्ग नौ हो जाता है वो आगे आएगी ना बस तीन का वर्ग माइनस करने का अभी कृति वर्गमूल चार की बात करेंगे तो समझ में आएगा चार का वर्ग सोलह चार का वर्गमूल दो वो माइनस किया चौदह हुआ हाँ उसका वर्ग करो उस राशि से अधिक राशि उपलब्ध हो वह कृति है या हम डायरेक्ट वही राशि अगर माइनस करते हैं चार का वर्ग सोलह में से चार गए तो बारह रहे बारह का वर्ग भी कितने बड़ी हो जाएंगे यानी तीन से आगे सारे कृति कृतित्व उसमें पाया जाता है बस इतनी बात लेगा कृतित्व पाया जाएगा अभी आगे की जो चौदह धाराएं वो भी हमको मालूम है गणित की सर्वधारा समधारा विषमधारा पढ़ी पढ़ने चलो ठीक है। देखो यह कृतित्व तीन आदिक संख्याओं में ही पाया जाता है। एक में संख्यात्व का भी निषेध नेमी चंद्राचार्य ने किया है क्योंकि एक की गिनती संख्या में नहीं होती। एक घट को देखकर घट की प्रतीति तो होती है परंतु उसके परिमाण की ओर दृष्टा का लक्ष्य नहीं जाता। एकाधिक यानी एक से अधिक घटों को देखने पर ही उनके परिमाण की ओर यानी प्रमाण की ओर लक्ष्य जाता है। त्रिलोक सार में निम्नलिखित 14 धाराओं का भी वर्णन किया है। यही धाराएं पंडित टोडरमल जी ने प्रसंगवश पर्याप्ति के प्ररूपने में ली क्योंकि उसमें लगती कुछ बातें वहां आती इसलिए अब यहाँ उसका पूरा ही फिर विवेचन आ जाएगा। सर्वधारा अभी इसका जो विशेषता है ना वो हम देखेंगे वहां पर। सर्वधारा ने एक से लेकर केवल ध्यान तक की एक एक से बढ़ती हुई सभी संख्याएं वो सर्वधारा कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक से 100 तक गिनेंगे तो 1 2 3 4 100 तक वो सर्वधारा हुई। समधारा उसमें से केवल सम हाँ 2 4 6 वो सब वो अंतिम 100 का हो जाएगा वो समधारा हुई। विषमधारा 1 3 5 वो सारे विषमधारा। कृति धारा कृति यानी वर्ग वर्गों की धारा जैसे 100 तक अगर हम गिनेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही है 2 का वर्ग 4 है 3 का वर्ग 9 है वो सारे वर्गों की धारा वो कृति धारा होगी। अकृति धारा यानी वर्गों को छोड़कर जो बचे ना वो सारे अकृति धारा में आ जाएंगे 2 3 5 6 7 8 ये सारे अकृति धारा। घन धारा यानी केवल घन घन लेना 1 है घन 2 का घन 8 है 3 का घन 27 है ये घनों घनों को गिनना वो घन धारा है। अघन धारा यानी घनों को छोड़ो बाकी जो चीजें है वो सारी अघन धारा है। कृति मातृका या वर्ग मातृका देखो कृति मातृका का अर्थ होता है जिनका वर्ग किया जाए वो कृति मातृका है। कृति की माता जैसे 1 से 100 तक कितने संख्याओं का वर्ग किया जा सकता है 100 का वर्गमूल क्या है
100 का वर्गमूल
कितने को कितने से गुणा करने पर 100 आ जाता है 10 into 10 तो 10 उसके वर्ग मातृका हुई। तो हमारी एक संख्या केवल ज्ञान के परे नहीं हो सकती कोई भी तो हमारी मैक्सिमम लिमिट हमने मान ली 100 है तो कितने संख्याओं की वर्ग हो सकते हैं 100 तक 1 से 10 तक ही होगी। 11 का वर्ग करने जाओ तो
2 से लेना पड़ेगा वर्ग
ये सर्वधारा में आती है ना 1 का वर्ग 1 है 2 का वर्ग 4 है तो जिन जिन संख्याओं का वर्ग हो सकता है वो हाँ वो है कृति मातृका। और 11 से लेकर 100 तक किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि हमारी लिमिट 100 की है इसलिए केवल ज्ञान के वर्गमूल तक हम कहेंगे कृति मातृक धारा। समझ में आती बात केवल ज्ञान के वर्गमूल तक ही है ना 1 2 3 4 5 कहाँ तक जिसका वर्ग हो सकता है। हाँ तो केवल ज्ञान के वर्गमूल का वर्ग केवल ज्ञान है जैसे हमने 10 का वर्ग 100 देखा था उसके पास नहीं कर सकते तो ये कृति मातृक धारा में 1 से लेकर केवल ज्ञान के वर्गमूल तक वो कृति मातृक धारा हो जाएगी। उसमें 1-1 बढ़ते चले जाओ केवल ज्ञान तक वो अकृति धारा हो जाएगी अकृति मातृक हो जाएगी। वही तो मैंने कहा ना 11 12 13 100 तक जिसका वर्ग नहीं हो
सकता
बराबर है कृति मातृका यानी जिनका वर्ग हो सकता है अकृति मातृका जिनका वर्ग नहीं हो सकता यानी 11 12 13 14 15 16 अकृति मातृका
कृति हमारे यहाँ अकृत लिखा है
देखो 8 का है कृति मातृका उसके आगे अकृति मातृका
हमारे यहाँ कृत है
कृत लिखा है अकृति करो उसके आगे भी ऐसा है घन मातृका जिनका घन हो सकता है। अब आप बोलो 100 तक किसका घन हो सकता है किसका सौ को पास नहीं करना, घन करना, एक का घन एक, दो का घन आठ क्यूब, तीन का घन सत्ताईस, चार का घन चौसठ, पांच का घन 125, वो तो नहीं, तो एक से चार तक ही घन मात्र का है। हाँ, यानी वो तो केवल ज्ञान का घन मूल लेना है, और अघन मातृ का हाँ पांच से लेकर सौ तक सारे अघन मातृ का में आ जाएंगे। द्विरूप वर्ग धारा, इसका हम बहुत बार यूज करते हैं, द्विरूप यानी दो, उसका द्विरूप वर्ग, दो का वर्ग क्या है, चार, चार हमारा पहला स्थान है, और वो वर्गों की धारा, वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग से चार, सोलह, दो सौ छप्पन, पनट्ठी, बादाल, इकट्ठी, ऐसे चले जाओ, उसमें पल्ले, अंगुल आदि सब भी बातें आगे आगे आती है, वो सारी क्या है, द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप घन धारा क्या है, नहीं, द्विरूप का घन आठ, आठ से शुरू हो जाए, पहला स्थान आठ है, दूसरा स्थान आठ का घन कितना, कैसे, आठ आठी चौसठ, चौसठ आठी पांच सौ बारह हो जाएगा, ख्याल में है, तो उसका घन इस तरह से, वो घन का, घन का सॉरी, घन का घन नहीं करना, घन का वर्ग करना,
आठ का वर्ग करना,
आठ का वर्ग करना, सॉरी आठ का घन नहीं करना, पहला स्थान घन लेना और आगे के स्थान उसके वर्ग करते रहना, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, फिर द्विरूप घना घन धारा, यानी पहला स्थान है घना का, घन का घन, दो के घन का घन, दो का घन आठ, आठ का घन पांच सौ बारह, पांच सौ बारह उसका प्रथम स्थान हुआ, उसके वर्ग से शुरू करना, बस एक्चुअली उसका वर्ग है वो पहला स्थान कहेंगे, आठ के वर्ग, हाँ आठ को पहला स्थान नहीं लेना, आठ के वर्ग को पहला स्थान लेना,
आठ के घन को
नहीं, द्विरूप घन धारा में, द्विरूप घन धारा में आठ का वर्ग चौसठ से शुरू हो जाएगा, हाँ, और घना घन में 512 के वर्ग से शुरू होगा, कंफर्म करना है, इसी में आएगी बात, वो अच्छा लिखा है, हाँ हाँ लिखा है आगे 49 से, कंफर्म करेंगे नहीं तो मैं कुछ बोलूंगी और आपको इसे, हाँ 49 पेज से आगे है, डायरेक्ट हम ये आसन घन घनमूल, वो हाँ द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा और घना घन,
छिहत्तर पेज पर द्विरूप घना घन है, उसके पहले होगा,
नहीं दो वर्ग धारा है, द्विरूप घन धारा चाहिए हमको,
चौहत्तर पेज पर,
बहत्तर पर है,
74 आपका मालूम है कौन सा पेज है, श्लोक 83
मेरे में द्विरूप घन धारा है वो 70 पेज से शुरू हुआ है, अच्छा वो चौसठ से शुरू हो जाए, फिर चौसठ का वर्ग करते चला जाना, देखो हाँ वहाँ लिखा है ना, नीचे विशेषांक में लिखा है, द्विरूप वर्ग धारणा में दो, फिर उसका चार, सोलह, दो सौ छप्पन वगैरह मिला क्या, बहत्तर पेज पे, अभी ये पेज नंबर सेम है कि नहीं है, नीचे विशेषार्थ है क्या, बराबर एकदम विशेषार्थ, देखो डायरेक्ट
अस्सी का विशेषार्थ है ना,
अस्सी का विशेषार्थ देखो, द्विरूप मिला सबको, द्विरूप वर्ग धारा में
विशेषार्थ,
72 निकाला, 72 निकालो, और उसमें नीचे विशेषार्थ लिखा है, 80 गाथा का विशेषार्थ। देखो नीचे से चौथी लाइन, जैसे द्विरूप वर्ग धारा में देखो ये 2 से शुरू किया है, परंतु वर्ग स्थान आगे है। देखो द्विरूप वर्ग धारा में पहला स्थान 2 लिखा है, परंतु वर्गों का स्थान 4 से शुरू होता है, 4, 16, 256, 65 बादाल इकट्ठी। द्विरूप घन धारा में 8 ये लिखा है, 8 का वर्ग 64, 64 का वर्ग 4096, विचार एक्सप्लेनेशन 70 में नहीं, यहाँ तो कौन सी राशि का घन लेना है वो है, और घनाघन धारा में वो 512 से शुरू हो जाएगा, 512 और उसके 12 में उसके बाद भी उसका वर्ग आ जाएगा। ये पहला है वो 8 का घन पहली संख्या है 512, आगे के 512 के वर्ग वर्ग लेना, घन घन नहीं लेना, वर्ग वर्ग लेना। हम पढ़ेंगे और जब जरूरत पड़ेगी जीव कांड निकाल के भी पढ़ाएंगे, ये सरल है। ये किसको कहना, ये 14 ये धाराएं हैं, यानी सीक्वेंसेस जो अलग अलग है, इनका स्वरूप आगे आने वाला है। हाँ, 8 ये प्रथम स्थान, फिर उसके वर्ग 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 वर्ग, हाँ घन का घन, 2 के जगह घन का घन लेना और आगे उसके वर्ग वर्ग करते हैं। देखो वर्गशाला का अर्ध छेद, त्रिकट छेद, चतुष्छेद, ये तो हमने अभी तक अर्धच्छेद ही देखे थे, आदि का भी उल्लेख आचार्य महाराज ने किया है। हाँ, वर्तमान में अर्धच्छेद गणित को लघु गणक सिद्धांत कहा जाता है, लॉग कहते उसको, लॉग लॉग, परंतु वहां पर भी त्रिकट छेद और चतुष्छेद नहीं है, लॉगरिथम जिसको कहेंगे, नहीं मालूम आप कहीं अर्थ, तो डायरेक्ट इसको ही पढ़ो ना, तो लॉग सीखने की जरूरत नहीं है। अर्धच्छेदों के द्वारा राशि ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत का विवेचन करते समय उसके नियमों का उल्लेख भी किया गया है। पल्य, सागर, सुच्चंगुल, प्रत्रांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और घन लोक का वर्णन किया है। ये सभी असंख्यातों के कुछ विशेष नाम हैं। उपमा मान कहते, उपमा देकर समझाया गया है। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य के भेद से पल्य के 3 भेदों की चर्चा की गई है, क्योंकि ये सारे माप पहले बताएंगे, फिर आगे यही बात काम में आने वाली है। अधोलोक का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी सामान्य ऊर्ध्व आयत, क्योंकि उसका आयताकार करके वो लंबा ऐसे समझाएंगे, तिर्यक आयत, यवमुरज, यव मध्य, मंदर, दूष्य और गिरिकटक, इन 8 आकृतियों का दिग्दर्शन कराया गया है। जब वो आएगा तब हम देखेंगे। पिनष्टि क्षेत्र का क्षेत्रफल भी बड़ी गूढ़ रीति से निकाला गया है। अधोलोक के समान ऊर्ध्वलोक का भी क्षेत्रफल निकाला गया है। हमने कुछ तो उसमें से धौला के चौथे भाग में देखा था थोड़ा। त्रसनाली और वात वलयों का विस्तार भी बड़ी सूक्ष्मता से प्रदर्शित किया गया है। तात्पर्य यह कि इस ग्रंथ के प्रत्येक अधिकार में संदर्भागत प्रमेय का बड़ी सरलता और स्पष्टता से वर्णन किया गया है। अब थोड़ा पढ़ेंगे, 2-3 मिनट है। देखो आचार्य नेमिचंद्र, त्रिलोकसार के रचयिता आचार्य नेमिचंद्र है, ये षटखंडागम के पारगामी विद्वान थे। कर्मकांड की निम्न गाथा से विदित होता है कि नेमिचंद्राचार्य ने षटखंडागम की पूर्ण साधना की थी। वो गाथा 397 नंबर की है। जह चक्केण य चक्की छखंडम साह्यम अविखेण तह मई चक्केण मया छखंडम साह्यम सम्मम। जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने चक्र रत्न के द्वारा षटखंड भरत क्षेत्र को किसी विघ्न बाधा के बिना ही साधित करता है, वश में करता है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी बुद्धि रूपी चक्र के द्वारा जीवस्वामी, क्षुद्रबंध, ये षटखंडों के नाम हैं, बंधस्वामी, वेदनाखंड, वर्गणाखंड और महाबंध, इन छह खंडों से युक्त परमागम को अच्छी तरह साधित किया है, उसका अध्ययन किया है। आचार्य श्री को सिद्धांत चक्रवर्ती पद से विभूषित किया गया है। अब बाकी जो चर्चा है वो कल थोड़ी पढ़ेंगे हम। वैसे तो ये विस्तार से जो जो कुछ लिखा है ना वो पढ़ने जैसा है। हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देखहु।